भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय टुडे आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के पंचम स्कंद अध्याय 21 और टेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे 12 से 19 तक। अधिकांश श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, हम लोग पूरा अध्याय को आज पूरा करेंगे। बारह लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे यह श्लोक नहीं है तो मैं अकेले से पढ़ूंगा। एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिशलक्षयो योजनानि अष्ट शतानि शताधिकानि सौरो रथस्त्रयमयो असौ चतस्त्रिषु परिवर्तने पुरिषु। इसमें पहले का शब्द अनुवाद पढ़ता हूँ, सब आप लोग बोले मेरे। एवं इस प्रकार मुहूर्तेन एक मुहूर्त 48 मिनट में चतुस्त्रिंशत 34 लक्ष लाख योजनानी योजन अष्ट शताधिकानी 800 और सौरथ सूर्य देव का रथ त्रयमय जो गायत्री मंत्र द्वारा पूजित है असौ वह चतस्रिषु चारों से होकर परिवर्तते घूमता है पूरियों से होकर। इसका अनुवाद है इस प्रकार त्रयमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूजित सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34 लाख योजन 2,72,06,400 मील की गति से घूमता है। तो कैसे सभी श्लोकों को पढ़ लेना होता है ना, कैसे करते हैं? ठीक है, हम इसको तात्पर्य केवल 18 में लिखा हुआ है, मैं 18 श्लोक पढ़ लेता हूँ फिर इसको पढ़ेंगे। तथान्ये च ऋषयो गंधर्व अप्सरसो नागा ग्रामीण्यो यातुधाना देवा इति एकैकसो गणः सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवन्तं सूर्यम् आत्मानं नाना नामानं पृथक नाना नामानः पृथक कर्म भी द्वंद्व स्व उपासते। अठारह इसमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं, श्लोक में थोड़ा पढ़ता हूँ अनुवाद। इस प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सरा नाग यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं किंतु दो दो के जोड़ों में विभाजित हैं, प्रतिमास नया नाम धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्मकांडों से उपासना करते हैं करते रहते हैं। तात्पर्य, विष्णु पुराण में कहा गया है, शृण्वन्ति मुनयः सूर्यं गंधर्वै गीयते पुरः नृत्यन्तो अप्सरसो यान्ति सूर्यस्यानु निशाचरः वहन्ति पन्नगा यक्षै क्रियते भी सुसंग्रह वालखिल्यास्तथैवेनं परिवार्य समासते। सोयम सप्तगण सूर्यमंडले मुनिषत्तम हिमोष्ण वारि विष्णुनाम हेतुत्वे समयम गतः। सर्वशक्तिमान देवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं, अप्सराएं रथ के समक्ष नाचती हैं, निशाचर रथ का पीछा करते हैं, पन्नग रथ को सजाते हैं, यक्ष रथ की रक्षा करते हैं और वालखिल्य नामक ऋषिगण सूर्य देव को घेर कर स्तुति करते हैं। 14 सहयोगियों के साथ जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम ताप तथा वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। इस अध्याय में पूरे अध्याय में सूर्य के गति का वर्णन किया गया है, सूर्य कैसे भ्रमण करते हैं। सूर्य में गति है, सूर्य चलते हैं, इसको कैसे जान सकते हैं हम लोग। एक जो भागवत में बात बताई गई है, यदि आप एक पक्षी है, उस पक्षी को पीपल के पेड़ पर देखते हैं कि पक्षी पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है सुबह के समय, संध्या दोपहर के समय वह कदम्ब वृक्ष पर बैठा हुआ था और शाम को उसके बाजू में जो दूसरा वृक्ष था नीम के वृक्ष पर पक्षी बैठा हुआ था, तो पक्षी के तीन भिन्न भिन्न स्थान भिन्न भिन्न समय में देखा गया। इससे अनुमान लगाया जाता है कि पक्षी में गति है, उड़ती होगी। पहला जो पीपल के पेड़ पर सुबह में पक्षी बैठी थी, दोपहर में कदम्ब के वृक्ष पर देखते हैं, स्वाभाविक अनुमान लगा सकते हैं कि वह पक्षी उड़कर गई होगी वहां पर, मतलब पक्षी में गति है। तो सूर्य में भी गति हम लोग को प्रत्यक्ष दिखता नहीं है, सुबह के समय हम सूर्य को कहीं और देखते हैं, देखते हैं ना, दोपहर के समय आकाश पर कहीं दूसरे जगह दिखता है और संध्या के समय कहीं दूसरे जगह दिखता है। तो ये स्वाभाविक अनुमान लगाया जा सकता है कि सूर्य में गति है, सूर्य चलता है। ऐसे तो हम लोग देखते हैं तो पता नहीं लगता, हम तो देखते हैं कि स्थिर ही रहता है। तो सूर्य में गति है, सूर्य गतिशील है। इस पूरे अध्याय में सूर्य के गति का वर्णन किया गया, सूर्य कैसे किस स्पीड से कहाँ कहाँ चलते हैं। तो इसके पूर्व जो श्लोक था उसमें आप पढ़े होंगे, सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत के चार दिशाओं में, सुमेरु पर्वत पर बड़ा विस्तारित पर्वत है, उस पर चार विशिष्ट नगर हैं। एक इंद्र का नगर है अमरावती अथवा उसको देवधानी भी कहा जाता है, जो सुमेरु पर्वत के पूर्व भाग में है और सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में एक नगर है उसका नाम है संयमनी। तो पूर्व भाग में जो शहर है, सिटी है, देवधानी अथवा अमरावती, वह इंद्र का निवास स्थान है। इंद्र वहां पर मुख्य रूप से रहते हैं, इंद्र की वह नगरी है। और सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में, दक्षिण भाग में एक विशिष्ट सेलिब्रिटी, बहुत प्रसिद्ध नगर है, उसका नाम है संयमिनी। संयमिनी नगर एक है जहाँ जमराज जी रहते हैं, जहाँ जमराज की वह राजधानी है, धर्मराज की वह राजधानी है। और फिर सुमेरु पर्वत के पश्चिम दिशा में एक नगर है जिसको निम्लोचती कह, निम्न लोचनी। और वहां पर वरुण देव की राजधानी है, वरुण देव की नगरी है। और फिर सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में एक नगर है, वो चंद्रमा का नगर है, उसका नाम है विभावरी। तो भगवान सूर्य सुमेरु पर्वत के चारों तरफ घूमते हैं। पहले उनकी स्थिति होती है, कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं देवधानी में, अमरावती में। तो वहाँ से जो मूवमेंट उनका होता है, तो किधर जाते हैं, वहाँ से किस दूसरे सिटी में जाते हैं, संयमनी दक्षिण में, फिर इसके बाद पश्चिम में जाते हैं, और फिर वहाँ से उत्तर दिशा में विभावरी में। तो आपको कल आप पढ़े होंगे, उनको सूर्य देव को देवधानी से, इंद्र के नगर से वहां पर जाने के, वरुण के नगर तक जाने के लिए निम्लोचनी, इसमें जाने में 12 घंटा लगता है। वहां से चलते हैं पूरब से, वहां से निकलकर अपनी गति से चलते हैं तो उनको 12 घंटा लगता है। और फिर निम्लोचनी जो वरुण देव की राजधानी है, वहां से पुनः चलते हैं रात्रि के समय, तो विभावरी जाते हैं, चंद्रमा के नगर में जाते हैं, और फिर इंद्र के नगर में पहुंच जाते हैं देवधानी। तो उसमें भी उनको 12 घंटे लगता है। तो इसका बहुत भारी डायमीटर बताया गया है, कितना बड़ा यह जगह है और उनका स्पीड क्या होता है। बहुत तीव्र गति से भगवान सूर्य चलकर इन दूरियों को, दूरी तय करते हैं। तो सामान्य रूप से इस इन श्लोकों में भी उन्हीं के गति का ही वर्णन किया गया है। सूर्य की स्थिति कहाँ है, नीचे का जो लोक है, इसे हम लोग भूलोक कहते हैं, नीचे पृथ्वी का, और ऊपर है द्युलोक, स्वर्ग लोक। पृथ्वी लोक, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में जो आकाश है, इसको अंतरिक्ष कहा जाता है। तो सूर्य देव अंतरिक्ष में, आकाश में रहते हैं, और वहीं से सभी लोगों को प्रकाशित कर, ऊपर के लोगों को और नीचे के लोगों को प्रकाशित कर। पृथ्वी मंडल, पृथ्वी जिसे भूलोक कहा जाता है, नीचे के सभी, और एक द्युलोक स्वर्गीय लोक, उसके बीच का जो खाली जगह है उसको अंतरिक्ष कहते हैं, आकाश। और वहीं पर सूर्य रहते हैं, वहीं से उनकी गति होती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर वर्णन किया गया है, वो जिस रथ पर चढ़ते हैं भगवान सूर्य, रथ से यात्रा करते हैं, रथ पर बैठे हैं कि रथ का जो संचालन करते हैं जो व्यक्ति, उनके सारथी का नाम है अरुण। जो रथ को चला, भगवान सूर्य तो रथी हैं, सूर्य रथ पर बैठते हैं तो खड़ा रहते हैं, लेकिन रथ का संचालन अरुण करते हैं। ऐसे आप लोग जानते हैं, जब सूर्योदय के काल होता है, सूर्योदय के पूर्व की जो स्थिति है लगभग 45 मिनट, उसको अरुणोदय कहते हैं। अरुण में लाल, आकाश में लालिमा छाती है प्रभात में, किशांत पहले अरुण आते हैं, रथ पर आगे बैठे हैं तो पहले अरुण दिखते हैं, अरुणोदय होता है, इसके बाद सूर्य आते हैं। तो अरुण जो हैं वे भगवान के रथ का संचालन करते हैं, सूर्य देव बैठे हुए हैं रथ पर और रथ के अग्रभाग में घोड़ों का संचालन, उसमें 12 कुछ घोड़े रहते हैं, 12 के साथ जो ये घोड़े रहते हैं और अरुण देव उसको दौर्ण करते हैं, अरुण देव उसका संचालन करते हैं। लेकिन अरुण की दृष्टि आगे नहीं होती है, यहाँ पर किसी कारण से यह बताया गया है कि अरुण हमेशा सूर्य की तरफ देखते रहते हैं, रथ का संचालन करते हैं, रथों घोड़े का लगाम उनके हाथ में होता है, रथ आगे चलाते हैं, लेकिन वे खुद मुड़ कर भगवान सूर्य की तरफ देखते रहते हैं। और यहाँ पर भागवतम में यह भी वर्णन किया गया है कि मुड़कर बाएं से मुड़कर दिखते हैं, दाहिने से ऐसे मुड़कर नहीं देखते हैं, पीछे हमेशा सूर्य की तरफ दिखते रहते हैं। और जब भगवान इस तरह से सूर्यदेव से यात्रा करते हैं तो उनको एक ऋषियों का समुदाय है, बाल खिल्या है, एक ऋषि हैं, उनकी संख्या 60,000 है, 60,000 ऋषि लोग, उन सबों का एक ही नाम है बाल खिल्य। अब 60,000 का अलग अलग नाम नहीं बताया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए 60,000 जो ऋषियों का समुदाय है बहुत छोटा उनका आकार होता है, अंगुष्ट मात्रम लिखा हुआ है, अंगूठा जो जहाँ लाइन होता है इतना बड़ा उनकी साइज होता है, छोटे और छोटे छोटे होते हैं 60,000। और वो लोग हमेशा भगवान सूर्य के आगे रहते हैं और स्तुति करते रहते हैं, 60,000 ऋषि ऐसा इन कामों में लगे रहते हैं। इसके तरह भगवान चलते हैं तो गंधर्व लोग भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं रथ के आगे आगे चलकर। और इस तरह से भगवान की सूर्यदेव की वो लोग सेवा करते रहते हैं, अन्य भी ऋषियों का तथान्य ऋषियों गंधर्व, यह श्लोक आज का है, बाल खिल ऋषियों के अतिरिक्त जो 60,000 उनकी संख्या है, 60,000 उनकी संख्या है, अन्य ऋषि लोग भी गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करते हैं, नाग नागलोक के लोग, ग्रामीणो जातु धान्या देवा 2100 गण, इस प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं किंतु दो दो के जोड़े में विभाजित हैं, वो जो 14 हैं लेकिन दो दो एक साथ रहते हैं, तो एक समय 7 रूपों में विभाजित, प्रतिमास तथा नया नाम धारण करके नामधारी सर्वाधिक शक्ति संपन्न देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर विभिन्न कर्मकांडों में उपासना करते रहते हैं, जो के अनेक तरह वो भगवान की आराधना करते हैं लेकिन सूर्य में भगवान की आराधना करते हैं, ऐसे कल्पना करते हैं कि सूर्य में भगवान प्रतिष्ठित हैं, तो उसमें भगवान की हमेशा और पूजा में लगे रहते हैं। हे राजन, भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2,000 योजन तथा 2 कोस 16,008 मील की गति से इतना बहुत लंबा हुकाल है 9,51,00,000 योजन, एक योजन मतलब 4 कोस का 8 माइल का एक योजन होता है, तो इतनी दूरी को तय करते हैं, उनकी गति इतनी होती है, 76,08,80,000 मील वो दूरी करते, इतना इस स्पीड से वो भगवान चलते हैं, स्पीड तो है उनका 16,08,000 एक क्षण, एक सेकंड में सूर्य 16,08,000 चलते हैं, तो इस गति से जो जिस पथ पर चलते हैं जो 24 घंटे में सूर्य देव पूरा करते हैं वह 76,08,80,000 मील की दूरी तय कर लेते हैं, बहुत तीव्र गति से चलते हैं। तो यह श्रीमद्भागवतम के इस भाग में जो सूर्य की गति का वर्णन किया गया है, अथवा इसके पूर्व भी भूगोल का वर्णन किया गया है, अथवा खगोल का वर्णन किया गया है, तो यह इतने इनकंसीवेबल, अचिंत्य है, इतनी दूरी है, उतना कैसे लोग ऋषि लोग कैलकुलेट करते हैं इसको हम लोग समझ नहीं सकते हैं। सारी भगवान की बहुत बड़ी व्यवस्था है। श्रीमद् भागवतम ये सूर्य केम करते हैं, एक जगह श्रीमद् भागवतम में यह कहा गया है, ऐसे रिपीटेडली कई बार कहा गया है, लेकिन मुख्य रूप से तीसरे स्कंध में सूर्य के विषय में कहा गया है, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात। भगवान कहते हैं कि जो वायु चलती है, हवा का संचार होता है, वह कृष्ण कहते हैं कि मद भयात, मेरे भय से। अब स्वतंत्र नहीं है वायु, वायु को किधर जाना है, किस गति से चलना है, क्या करना है, वह भगवान कहते हैं मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। और सूर्य प्रतिदिन क्षितिज में आकाश में आते हैं, सबको प्रकाश देते हैं और इस प्रकाश के साथ वो गर्मी प्रदान करते हैं, अथवा उनमें जो गति होती है निरंतर भ्रमण करते हैं, एक जगह रुकते नहीं, एक जगह से दूसरे स्थानांतरण करते रहते हैं। भगवान कहते हैं सूर्यस्तपति मद भयात, मेरे भय से, मेरी आज्ञा का अनुसरण करने के लिए। आपात दृष्टिकोण से और वर्ष तिंद्र दहत्यग्नि इंद्र देवता वर्षा करते हैं, कहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता होती है कर्म के अनुसार बारिश करते हैं, और अग्नि किसी चीज को जला देती है, अथवा आग किसी चीज को जला देती है, अथवा अग्नि देवता किसी को जला देते हैं, तो क्यों जला देते हैं, उनको भगवान का भय है, उनको नियुक्त किया गया है कि यह आपको काम करना है। आपात दृष्टिकोण से देखा जाता है कि देवता लोगों को प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं अंततः वे कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हैं, तो मूल कारण कृष्ण है। हम लोगों को प्रकाश मिल रहा है, हम लोगों को ताप मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, आपात से देखते हैं तो सूर्य देवता देते हैं, लेकिन वास्तव में सूर्य देवता नहीं, भगवान ही देते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए ऐसा सूर्य करते हैं। मद भयाति वाति वातोयम, मद भयात वाति वातोयम, यह हवा जो चलती है, हवा में जो गति है, एक जगह से दूसरे जगह हवा चला जाता है, तो यह क्यों चलता है, भगवान के भय से, भगवान का आज्ञा है, वो करना ही है, एक जगह हवा को एक जगह रुकना नहीं है, भगवान कह दिया चलना है तो चलना है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य ताप देते हैं, जो प्रकाश देते हैं, तो वो स्वतंत्र नहीं है कि देंगे अथवा नहीं देंगे, उनको देना ही है, भगवान की आज्ञा है। भगवान सूर्यस्तपति, सूर्य तपता है, गर्मी प्रदान करता है अथवा प्रकाश प्रदान करता है, अथवा एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो मेरे भय से जाता है। उसी तरह वर्ष तिंद्र इंद्र देवता वर्षा करते हैं, दहत अग्नि अग्निदेव किसी चीज को जला देते हैं, उनको उन पर अग्नि प्रज्वलित हो, उस पर घास डाला जाता है, जला देते हैं। अब वो नहीं कहते मैं नहीं जलाऊंगा, नहीं जलाएंगे तो उनको चेस्टाइजमेंट मिलेगा, डांट मिलेगा भगवान का, उसे उन करना पड़ता है। तो सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य की है, सूर्य की गति का प्रंत है, तो सूर्य के विषय हम चर्चा करते हैं। आप लोग जानते हैं ना कि सूर्य के पिता कौन है, सूर्य किसके पुत्र हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, माता का नाम है अदिति। अदिति इसलिए सूर्य का एक नाम आदित्य भी है, अदिति के पुत्र होने के कारण तो उनका एक नाम है आदित्य। अदिति के पुत्र हैं, अथवा कश्यप ऋषि के पुत्र हैं और सूर्य के भी कुछ विशिष्ट प्रसिद्ध पुत्र हैं, मनु महाराज, 14 मनु हैं, उसमें एक मनु है वायुअश्वत मनु तो सत्य श्राद्ध देव, वे इनके पुत्र हैं। इसके अतिरिक्त सूर्य के पुत्रों में जमराज की भी गणना है। जमराज सूर्य के पुत्र हैं, धर्मराज सूर्य के पुत्र हैं, और वैदिक ग्रंथों में सूर्य की एक पुत्री का भी नाम आता है और वह है जमुना। जमुना सूर्य की पत्नी है, सॉरी सूर्य की पुत्री है। इसके अतिरिक्त इनके औरस पुत्र अथवा पुत्री तो नहीं, लेकिन वैदिक ग्रंथों में ख्याति है कर्ण भी, जो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, वे भी सूर्य की कृपा से कुंती देवी को प्राप्त हुए थे, इसलिए कर्ण को भी सूर्य का पुत्र माना जाता है, सूर्य के पुत्र हैं कर्ण। और वैदिक इतिहास में एक और बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं रामायण में, सुग्रीव, बाली और सुग्रीव का अपना था, सुग्रीव भी सूर्य के पुत्र थे, किसी कारण से उनको सूर्य के उनका सूर्य देव की पत्नी, सबसे महत्वपूर्ण पत्नी, प्रमुख पत्नी है, उसका नाम है संज्ञा, और सूर्य की एक दूसरी भी पत्नी है जिसका नाम है छाया। तो छाया ये भगवान सूर्य देव का समान, परे भगवान जहाँ भगवत गीता में गीता के ज्ञान की परंपरा बताते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इच्छा कवे ब्रवृत्त। तो इस तरह से वहाँ पर कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को मैंने सूर्य को दिया था, सूर्य देवता को मैं यह ज्ञान प्रदान किया था, और सूर्य देवता ने भगवद्गीता के इस ज्ञान को प्रसारित किया, अपने पुत्र मनु महाराज को दिया। 14 मनुओं में से जो सातवें मनु हैं, जो इस समय शासन कर रहे हैं श्राद्ध देव, वे सूर्य के पुत्र हैं, तो उस ज्ञान को सूर्य देव अपने पुत्र मनु महाराज को दिया, और फिर मनु महाराज ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इस प्रकार को ज्ञान की जो परंपरा है वह राजर्षियों द्वारा जानी जाती थी और चल रहा था, लेकिन भगवान वहाँ कहते हैं सकाले न महता योगो नष्ट परम तपः, परंतु हे अर्जुन वह ज्ञान की जो परंपरा थी है वह लुप्त प्राय हो गई है, इसलिए उस ज्ञान को मैं पुनः तुमको बताऊंगा, क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हे तत् उत्तम। भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान को मैं तुमको बताऊंगा अर्जुन, मैंने चयन किया है, तुम ज्ञान को बढ़िया से समझ सकते हो, ज्ञान को धारण कर सकते हो, इसको एसिमिलेट कर सकते हो अपने व्यक्तित्व में, क्योंकि तुम्हारी योग्यता है कि भक्तोसी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, और इसके साथ भगवान सखा चेति, तुम मेरे मित्र हो और मेरे भक्त हो, मुझसे प्रेम करते हो और मुझ में किसी प्रकार का दोष दर्शन तुम नहीं करते हो। सखा वो है, ऐसे तो सखा का व्युत्पत्तिपूर्व अर्थ है जो एक साथ खाता है, एक साथ बैठकर खाते हैं मित्र लोग, तो सखा कहते हैं साथ साथ जो खाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मित्र होता है अपने मित्र में किसी प्रकार का दोष दर्शन उसमें दोष नहीं निकालता है, तो तुम मेरे व्यक्तित्व में मुझ में किसी प्रकार का दोष नहीं देखते हो, इसीलिए तुम योग्य पात्र हो भगवद गीता के ज्ञान को समझने के लिए और साथ साथ तुम भक्त हो। तो सूर्यदेव के विषय में वैदिक जो संस्कृति है, वैदिक साहित्य है, वैदिक जो धर्म है, इसमें भगवान सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। यच्चक सुरेश सवित सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमृत सेज तेज। सूर्य के विषय में कहा यच्चक सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त, जो जितने नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, उसके सूर्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वो राजा हैं, नृप हैं, किंग हैं, और भगवान की वो नेत्र हैं। सूर्य चक्षु सूर्य अजायतः, सूर्य उत्पन्न भगवान के, चंद्रमा और सूर्य भगवान के नेत्र समझे जाते हैं। इसके बाद जितने भी नक्षत्र हैं, तारे, उसके उस राजा हैं, अशेष तेज है, अमित प्रभाव है। तो भगवान सूर्य और वैदिक में साहित्य में दो विशिष्ट क्षत्रियों का जो वंश है, उसमें एक चंद्र वंश और एक सूर्य वंश है, अति ग्लोरियस वंश, पुनीत वंश, जिसमें बार बार भगवान अवतार भी लिए हैं सूर्य वंश में और चंद्र वंश में। तो भगवान सूर्य का एक बहुत बड़ा वंश है, उनकी जो वंश परंपरा है, और हम लोगों को जो जीवन प्रदान होता है, जीवनी शक्ति प्रदान होती है, वो सूर्य के द्वारा ही था। आप देखते होंगे, प्रैक्टिकल अनुभव है, यदि कोई पौधा है वो छाया में है तो उतना विकसित नहीं होता है, जब उस पर धूप सूर्य का डायरेक्ट किरण लगता है तो उसमें सौंदर्य और शक्ति दोनों का संचार होता है। ऐसे चंद्रमा भी, चंद्रमा के किरणों द्वारा और सूर्य के किरणों द्वारा जो हम लोग जीवनी शक्ति मिलती है, तो हम लोग जीवित रहते हैं, हमारे जीवन में शक्ति मिलती है, तो हमारे हम बढ़ते हैं। चाहे कोई पौधा बढ़ता है, उसमें सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। सूर्य ने, सूर्य ही संपूर्ण ब्रह्मांड में जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं। सौंदर्य और जीवन शक्ति हमें जो आता है वो सूर्य के द्वारा आता है, सूर्य के किरणों के द्वारा आता है। हमारे जीवन के मुख्य आधार सूर्य ही हैं। तो सूर्य बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़े देवता, और एक तरह से तो प्रत्यक्ष देवता हैं, और तो देवता दिखते इतने नहीं हैं हम लोगों को, लेकिन सूर्य एकदम प्रत्यक्ष रोज दिखते हैं, और उनसे जो लाभ है, फायदा है, वो प्रतिदिन दिखता है। विशेषकर हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं इस मौसम में, सर्दी के समय में जब रात्रि बीतती है तो थोड़े देर के बाद गर्मी आने लगती है, तो डायरेक्ट रोज रोज हम लोग लाभान्वित होते हैं। चाहे जहाँ ठंडा हो रहा है तो छत पर चले जाते हैं, सूर्य के किरणों में लाभ उठा ले। तो सूर्य सबसे महत्वपूर्ण, उनकी जो गति है, उनका जो स्पीड है, वह एक तरह से इनकंसीवेबल जैसा है हम लोगों के लिए है। ऐसे कहा गया है कि पृथ्वी से, हम लोगों से सूर्य की जो एवरेज डिस्टेंस है, कभी कभी थोड़ा दूर चल जाते हैं, नज़दीक भी आ जाते हैं, लेकिन एवरेज जो डिस्टेंस है लगभग 9.5 लाख माइल इतना ही है ना। सूर्य कितना दूर है हम लोगों से? लगभग 9.5 करोड़ माइल की दूरी पर सूर्य जाते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चल जाते हैं, कभी कभी नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन एवरेज जो डिस्टेंस है लगभग 9.5 करोड़। और सूर्य का जो प्रकाश है वह उसका काफी 1,85,000 माइल पर सेकेंड गमन करता है। सूर्य किरण है 1,85,000 माइल प्रत्येक एक सेकेंड में, इतना वह दूरी तय करता है सूर्य किरण। सूर्य जब उदित होते हैं हम लोगों को लगभग 8 मिनट के बाद दिखते हैं, और सूर्य अस्त हो जाते हैं तो हम लोग को 8 मिनट तक दिखते रहते हैं। मतलब वहाँ से इतना दूरी है कि वहाँ से प्रकाश को आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य उदित हो जाएंगे, आ जाएंगे क्षिति पर, लेकिन हम लोग को कब दिखेंगे? 8 मिनट के बाद दिखेंगे। और जब सूर्य अस्त हो जाएंगे, अस्त होने के बाद भी 8 मिनट तक हम लोगों को दिखते रहते हैं। तो सूर्य मुख्य रूप से, उनकी गति कैसे वे चलते हैं सुमेरु पर्वत के चारों तरफ, वो चक्कर लगाते हैं और उनका जो रथ है उसमें दो चक्के नहीं हैं, एक पहिया है, एक व्हील है केवल, कि जो उसका जो धुरी है एक तो सुमेरु पर्वत पर ही रखा गया है और उसी के आजू बाजू में चक्कर लगाते हैं, इसीलिए दो चक्का नहीं है। प्रायः देखा जाता है कि दो चक्र होते हैं, दो नहीं है, चार नहीं है, एक ही है। और एक तो टीका हुआ उस पर काल चक्र जिसे कहता है, काल चक्र का अर्थ होता है कि टाइम का व्हील, समय का व्हील, वह काल चक्र उसे कहते हैं। एक ही है रथ में, दो चक्के नहीं है रथ में, केवल और केवल एक चक्र है, इसको काल चक्र कहा जाता है। काल चक्र का यहाँ पर मृत्यु से नहीं है, मृत्यु चक्र नहीं, समय चक्र, उस चक्के का विशेष जो है उसको काल चक्र नाम है। इस तरफ भगवान सूर्य घूमते रहते हैं, यहाँ पर सुमेरु पर्वत में घूमते हैं तो विशिष्ट सुमेरु पर्वत के चार दिशाओं में जो चार विशिष्ट नगर हैं तो उनकी यात्रा प्रारंभ होती है देवधानी से अथवा अमरावती से, इंद्र का जो जगह है, और इसके बाद दक्षिण दिशा में, उसके सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में दक्षिण भाग में एक नगर है संयमिनी, वहाँ जाते हैं। इसके बाद पश्चिम दिशा में निम्नलोचनी नगर है वरुण देव का, और वहाँ से भगवान यात्रा करते हैं, जाते हैं विभावरी जो जहाँ चंद्रमा की राजधानी है, चंद्रमा जहाँ निवास करते हैं, और पुनः भगवान आ जाते हैं, सूर्यदेव आ जाते हैं पूर्व दिशा में, मतलब देवधानी में, और जिसमें भगवान को, सूर्यदेव को 24 घंटे लगते हैं पूरे। डिस्टेंस भी बताया गया है कि जो जिस ऑर्बिट पर, जिस अक्ष पर घूमते हैं वो कितना बड़ा दूरी है। तो ठीक है, यह इस तरह से अध्याय की समाप्ति होती है। छोटा अध्याय है हार्डली, इसमें एक दो श्लोकों में, दो तीन श्लोकों में प्रभुपाद थोड़ा थोड़ा परपट लिखे हैं, थोड़ा सा तात्पर्य है। तो इस अध्याय को हम लोग समाप्त करते हैं। ऐसे कुल मिलकर इसमें 19 इस प्रोज फार्म में है, 19 पैराग्राफ हैं, और इस तरह यह अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के पंचम स्कंध के अंतर्गत सूर्य की गतियों का वर्णन नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक, हम यहाँ समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न है तो आप पूछिएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद की जय। हाँ बोलिए।
शुरुआत में आपने पीपल का पेड़ का और चिड़िया का जो उदाहरण दिया था, पीपल और कर्ण पेड़ का, तो जैसे कि यहाँ भी क्या पेड़ जो है वो उस पे रुका हुआ है, फिक्स है, और चिड़िया इधर जा सकती है। उसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो क्या है, जैसे जो हमने सोलर सिस्टम में डेवलपमेंट जैसे पढ़ा है, तो हम ये देखते हैं कि धरती घूम रही है और जो सूरज है वो बीच में रुका हुआ है और धरती क्योंकि इधर उधर जा रही है, उसके ऑर्बिट कम
हाँ, अभी उस विषय में इसीलिए वह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। आज के जो साइंटिस्ट की मान्यता है कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, सूर्य एक जगह है, पृथ्वी ऐसे घूमती है तो उसके कारण दिन रात होता है, एक जगह पृथ्वी है ऐसे चक्कर लगा रही, सूर्य में गति नहीं है। तो इसी को कुछ है, उस गति है लेकिन सापेक्ष दृष्टिकोण से उसमें गति नहीं है, दिन रात के मामले में साइंटिस्ट लोग मानते हैं। तो उसी बात को प्रभुपाद जी कहते हैं, वैदिक ग्रंथ में कहते हैं सूर्य भी चलते हैं, यह तो सूर्य की गति। तो इसीलिए प्रभुपाद जी खूब समझाने के लिए उदाहरण देते हैं कि पक्षी सुबह में देखे कि वहाँ बैठा था और दोपहर में यहाँ बैठा है और शाम को वहाँ बैठा है, आपने उड़ते नहीं देखा है, उड़ते नहीं देखा है। आपने सुबह में देखे तो एक पेड़ पर, पीपल के पेड़ यहाँ तक बैठी थी, दोपहर में गए तो वहाँ बैठी है, और शाम को देखेंगे तो वहां बैठी, आखिर वो कैसे चली गई है? आपने तो उड़ते नहीं देखा, लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं कि वो उड़ी होगी, उसमें गति है, कहीं ना वहां कैसे चली गई। यदि एक जगह रहती तो वैसे सूर्य भी यदि एक जगह, हमको तो दिखते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में है, चलते हुए तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन मान लीजिए आप रूम में बैठ गए, सुबह में दर्शन किए, रूम में बैठ गए, बाहर नहीं गए, दोपहर के निकले तो देखे कि सूर्य तो आकाश में यहाँ पर है, और फिर रूम में चले जाइए दिन भर, सुबह शाम को निकले तो देखे कि वहां चला गया। तो इससे आप अनुमान समझते हैं ना, आपने देखा नहीं सूर्य को चलते हुए, लेकिन उसमें स्थानांतरण हुआ है 12 घंटे में, मतलब उसमें गति होगी। तो उसी बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं पक्षी यहाँ बैठा है, देखे दोपहर में गए तो वहाँ बैठा हुआ है, शाम को देखे तो वहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब पक्षी में चली होगी, चलती है, इतना अनुमान कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रभुपाद जी यही कहना चाहते हैं कि साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि गति ही नहीं है, एक जगह सूर्य है, और एक जगह है तो दोपहर में इधर कैसे आ गया है। तो उसको समझाने के लिए उसको एग्जैक्ट लॉजिक नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि वैदिक ग्रंथों में तो यहाँ पर देखिए सूर्य की गतियों का वर्णन साफ, सूर्य चलता है। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं सूर्य अस्थिर है, तो इस बात को रिफ्यूट प्रभुपाद बताना है, नहीं सूर्य चलता है, सूर्य में गति है। आप ही कैसे जानते हैं, देखते हैं तो सूर्य नहीं चलता है, कहाँ दिखता है चलते है? हम तो जब देखते हैं तो एक जगह रहता है, जब भी देखते हैं तो हमको नहीं पता लगता है चल रहा है, तो हम कह सकते हैं ना सूर्य में गति नहीं, एक जगह तो रहता है, हमारा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उससे लगता है कि सूर्य में गति नहीं है, लेकिन लॉजिक से युक्ति से पता लगना उसमें गति है, तभी ना पूर्व था पश्चिम चला गया। धरती भी घूम रही है, धरती में भी गति है, चक्कर लगा रही है, लेकिन इसके बाद सूर्य का भी एक्सिस एक्स है, ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में सूर्य भी घूमता है, पृथ्वी में भी गति है, पृथ्वी भी अपने अक्ष पर नाचती है, उसमें दो राय नहीं है, वो नाचती रहती है, लेकिन सूर्य भी उसके सामने पृथ्वी पर नाचती रहती है, लेकिन सूर्य का भी अपना एक अक्ष है, अपना एक ऑर्बिट है जिस पर सूर्य भी चलते रहते हैं। ठीक है, यहीं पर समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।